इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल फूस की आग की तरह हैं, जैसे ये फट से भड़क उठ सकते हैं, फिर वैसे ही झट से बुझ भी सकते हैं। इन लोगों के पीछे हमेशा एक ऐसे आदमी का रहना ज़रूरी हो जाता है जो उस आग को बनाए रखने के लिए लगातार फूस मुहैया कराता रहे। इन्हीं पंक्तियों से शुरू होती है बड़ी दीदी उपन्यास। ये पंक्तियाँ बताती हैं सुरेंद्रनाथ के बारे में, जिसे बल, बुद्धि और साधन सब उपलब्ध है, फिर भी वह अकेले अपना कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता। उत्साहपूर्वक थोड़ा सा काम करके बाकी आलस्यवश छोड़कर बैठ जाया करता है। तब उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उसे प्रेरित कर सके। उसके इस स्वभाव की वजह है उसकी विमाता। यह विमाता इतनी तत्परता से उसके पीछे लगी रहती थी कि बहुधा वह समझ ही नहीं पाता था कि उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता है भी कि नहीं। उसे कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी और कब उसे क्या करना पड़ेगा, इन बातों के लिए उसे पूरी तरह किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता था। सुरेंद्रनाथ एमए कर चुका था। एक दिन अपने एक दोस्त के परामर्श पर वह विलायत जाकर शिक्षा का विचार बनाता है, किंतु उसकी विमाता के बीच में आ जाने की वजह से यह संभव नहीं हो पाता। परंतु अपने मित्र की बात कि ऐसे पराधीन जीवन से भीख मांग कर जीना कहीं अच्छा है, उसके दिमाग में घर कर जाती है। और एक रात पिता को पत्र द्वारा सूचित कर वह कलकत्ता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो जाता है। कलकत्ता आकर सड़कों की खाक छानते छानते जब वह थक जाता है, तब एक दिन सड़क पर एक आदमी से यूं ही नौकरी दिलाने को कहता है। वह आदमी उसे पढ़ा लिखा जानकर एक अमीर जमींदार के घर जाने को कहता है। उस घर में वृजराज लहड़ी रहते हैं, जो पूर्व वंग वर्तमान में बांग्लादेश के जमींदार हैं। वह एक बहुदर्शी आदमी है जो सुरेंद्रनाथ को देखकर ही बहुत कुछ समझ जाते हैं और उसे अपनी छोटी बेटी प्रमिला, जो 7 साल की है, को पढ़ाने का काम दे देते हैं। प्रमिला के अलावा उनका एक बड़ा बेटा शिवचंद्र और मंझली बेटी माधवी है। माधवी जब 16 साल की थी तभी उसके पति गुजर गए, जिसके बाद से वह अपने पिता के घर में ही रह रही है। पति की मृत्यु के बाद से माधवी एकदम बदल गई है। अपने हृदय में खिलने वाले फूलों के गुच्छे बनाकर वह अंजलि में भर भर कर दीन दुखियों में बांट देती है। ब्रज बाबू की पत्नी की मृत्यु के बाद से बिगड़ी इस घर की व्यवस्था को उसी ने संभाल रखा है। सब उसे बड़ी दीदी कहते हैं। सुरेंद्रनाथ की भी सभी जरूरतों का वह बड़े जतन से ध्यान रखती थी। वह सोचता था कि बड़ी दीदी नाम की एक जीवन सत्ता इस घर में है, जो सबको देखती है, सबकी सब जिद्दों को सहन करती है। सुरेंद्रनाथ को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती वह प्रमिला से बड़ी दीदी को कहलवा देता। सुरेंद्रनाथ के ये छोटे मोटे आवेदन मिश्रित अत्याचार करीब हर रोज माधवी को सहने पड़ते थे। धीरे धीरे वह इन सब की आदी हो गई थी। सुरेंद्रनाथ की अपने प्रयोजनों से अधिक जानने की इच्छा कभी ना होती। पिछले 3 महीने से वह इस परिवार में था। यह अरसा उसने बड़ी दीदी के सहारे बड़े आराम से गुजार दिया। परंतु जब एक बार बड़ी दीदी काशी चली गई, वह इतना और अधिक जान गया कि बड़ी दीदी के बिना उसका काम कतई नहीं चल सकता। एक दिन दोपहर के समय जब ब्रजराज बाबू 2 दिन से जमींदारी देखने गए थे, माधवी ने प्रमिला से पढ़ाई का पूछना शुरू किया तो जानकर हैरान रह गई कि सुरेन नाथ ने इतने दिनों में उसे कुछ पढ़ाया ही नहीं था। वह तो बस अपने आप में ही मगन रहता था। माधवी ने नाराज होकर सुरेन नाथ से प्रमिला को पढ़वाना बंद करवा दिया। तीसरे ही दिन सुरेन नाथ ने वह घर छोड़ दिया, अपनी कुछ पुस्तकें बगल में दबाई और भूखा प्यासा ही नौकर से कहकर निकल गया। माधवी यह जानकर बहुत परेशान हुई, नौकरों को भेजकर ढूंढवाने की बहुत कोशिश की पर उसका कुछ पता ना चला। 1 हफ्ता बीत गया, सुरेन नाथ वापस न आया। माधवी ने अन्न जल लगभग त्याग सा दिया। उधर सुरेन नाथ भूखा सड़कों पर घूमता था, भूख लगने पर वह पानी पी लेता। एक रात अंधेरे में एक घोड़ा गाड़ी उस पर चढ़ गई, छाती और बगल में गहरी चोट खा वह बेहोश हो गया। अस्पताल में आधे होश की हालत में बड़ी दीदी का नाम लेता रहा। होश आने पर वह अपने पिता को पत्र भिजवा देता है और ठीक होने पर उनके साथ वापस चला जाता है। सुरेन नाथ के नाना पबना जिले के एक जमींदार थे। पुत्रहीन होने के कारण वह अपने इकलौते दोहते सुरेन नाथ को अपना उत्तराधिकारी बना जाते हैं और इसके बाद ही धूमधाम से सुरेन नाथ का ब्याह हो जाता है। एक लंबा 5 साल का अरसा गुजर चुका है। आजकल सुरेन नाथ की जितनी सुख्याति है उतनी ही अख्याति भी। पहली बात सुरेन नाथ पर लागू होती है और दूसरी उसके मैनेजर मथुरा नाथ बाबू पर। प्रजा की करुण पुकार सुन शांति देवी सुरेन नाथ की पत्नी कभी कभी उसे खुद जमींदारी ना देखने पर उलाहना दे देती हैं। सुरेन नाथ जैसे एकाएक होश में आ जाता है और कुछ दिन बड़े लगन से काम देखने के बाद मथुरा नाथ की बातों में आकर फिर पुराना रवैया चालू हो जाता है। एक दिन पत्नी के उलाहना देने पर सुरेन नाथ उसे बताता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। कलकत्ता में जिस दिन गाड़ी के नीचे दबकर उसे छाती और बगल में चोट लगी थी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। साथ ही बातों बातों में वह यह भी कह जाता है कि अगर बड़ी दीदी आ जाए तो मेरी सब तकलीफें दूर हो जाए। उधर कलकत्ता के भवन में ब्रज बाबू के स्थान पर अब शिव चंद्र मालिक हैं और माधवी के बदले अब नई बहू मालकिन है। सबका व्यवहार मधुर है पर माधवी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। एक दिन शिवचंद से कहकर वह काशी से अपने भांजे को लेकर अपनी ससुराल पबना जिले के गोला गांव आ जाती है। 7 साल के लंबे अरसे के बाद वह गोला गांव में पतिगृह में प्रवेश करती है और चटर्जी महाशय मुसीबत में पड़ जाते हैं। वह माधवी के पति योगेंद्र नाथ की मृत्यु के पहले से ही उनकी जमीन जायदाद की देखभाल करते थे और इस संपत्ति पर अधिकार जमा कर इसका विधिवत लाभ उठा रहे थे। माधवी को वहां से भगाने की इच्छा से वह लालता गांव जाते हैं और मैनेजर मथुरा बाबू से मिलकर जमीन हड़पने की योजना बनाते हैं। मथुरा बाबू 10 साल के बकाया लगान और सम्मान के फर्जी कागज तैयार करवाकर संपत्ति की नीलामी का इश्तिहार जारी करवा देता है। माधवी निराश होकर अपने भांजे संतोष को लेकर काशी लौट जाने का मन बनाती है और सवेरे नाव में सवार हो जाती है। इधर सुरेन्द्रनाथ जमींदारी से संबंधित फाइलें घर पर ही बैठा देख रहा है। तबीयत ठीक ना रहने की वजह से शांति देवी ने उसे बाहर जाने से मना कर रखा है। तभी उसके हाथ माधवी की जमीन की नीलामी की फाइल लगती है। फाइल देखते ही वह कचहरी घर जाके मथुरा बाबू से मिलने की जिद करता है और निकल पड़ता है। मथुरा नाथ से जानकर कि यह माधवी बड़ी दीदी ही है, वह वहीं सिर नीचा करके बैठ जाता है। फिर अचानक नौकर से एक घोड़ा मंगाकर तुरंत गोलागांव के लिए निकल पड़ता है। पीछे से शांति देवी उसकी सलामती की मन्नत मांगती रहती हैं। रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह रक्त की कुछ बूंदें मुंह से निकलकर कुर्ते पर आ गिरती हैं। गोलागांव पहुंचकर उसे पता चलता है कि माधवी वहां से सवेरे ही निकल गई। रास्ता पूछकर वह उस दिशा में बिना रुके फिर चल पड़ता है। 2 कोस आकर घोड़ा आगे ना जाने पर वहीं सुरेन्द्रनाथ घोड़ा छोड़कर पैदल ही चल देता है। ओठों से रक्त की बूंदें तब भी चू रही थीं। नदी में उतरकर उसने अंजलि भर पानी पिया और दौड़ने लगा जी जान से। दिन खत्म होने लगा, पैरों में अब चलने की शक्ति भी बाकी नहीं है। नदी के मोड़ के पास एक नाव जाती दिखती है। सुरेन ने पुकारा, बड़ी दीदी। सूखे गले से आवाज की जगह खून की 2 बूंदें टपक पड़ी। पास आकर फिर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी उठकर बैठ गई। देखा, कीचड़ और धूल से लथपथ मास्टर साहब। तुरंत नाव किनारे पर लगाने को कहा और सुरेन्द्रनाथ को सब मिलकर उठाकर नाव पर ले आए। माधवी ने अपना हार मल्ला को देकर तुरंत लालता गांव पहुंचाने को कहा। होश आने पर सुरेन्द्रनाथ ने आँख खोलकर माधवी को देखा। माधवी के मुख पर अब घूंघट नहीं है। तुम बड़ी दीदी हो? अपने भवन के शयन कक्ष में बड़ी दीदी की गोदी में सिर रखे मृत्युशैया पर सोया है सुरेन्द्रनाथ। उसके पैरों को शांति अपनी गोदी में रखे आंसुओं से धोई दे रही है। पबना के डॉक्टर वैद्य मिलकर भी खून को बंद नहीं कर पा रहे हैं। सुरेन्द्रनाथ बोला, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था? तभी मैंने भी तुमसे बदला लिया था, तुम्हें भी निकाल दिया घर से। तत्क्षण माधवी बेहोश हो जाती है और जब होश में आती है सुरेन्द्रनाथ जा चुका था।
मैंने पढ़ा और सोचा तो बहुत कुछ था, परंतु मुझे अनुभव ना था। मैंने सोचा कि मुझे स्वयं अनुभव ही करना चाहिए, तभी मेरे विचार परिपक्व बनेंगे, तभी मालूम होगा कि मेरी आज की कल्पना में कितनी सच्चाई और कितना खोखलापन है। मैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे प्राथमिक पाठशाला की एक कक्षा सौंप दें। अधिकारी पहले तो हंसे और मना किया, फिर मेरी प्रबल इच्छा जानकर उन्होंने चौथी कक्षा सौंप दी। उसका पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक व नियम बताकर साहब ने टोका, देखो जैसा चाहे वैसा प्रयोग करने की स्वतंत्रता तो तुम्हें है, लेकिन यह ध्यान रखना कि 12वें महीने में परीक्षा भी होती है। तुम्हारा काम परीक्षा की माप से मापा जाएगा। मैं सारा पाठ्यक्रम देख चुका था और विश्वास हो गया था कि कई फेरबदल करने पड़ेंगे। क्या क्या सुधार हो सकेंगे यह सब विचार कर अगले दिन सुबह उत्साह के साथ पाठशाला जा पहुंचा। घंटी बजी, लड़के कक्षा में आकर बैठे और प्रधानाध्यापक ने मेरे साथ आकर मुझे मेरी कक्षा दिखाई व लड़कों से परिचय करवाया। मैंने देखा इन बालकों को मुझे पढ़ाना था। इन मस्खरे, उद्यमी, ऐंठबाज और चित्र विचित्र लड़कों को मैंने रात टीपी हुई बातें जेब से निकालकर देख ली। लिखा था, पहले शांति का खेल, फिर कक्षा की सफाई की जांच, फिर सहगान, फिर वार्तालाप आदि। मैंने शांति का खेल शुरू किया, लेकिन लड़के तो धक्का मुक्की में और बातों में लगे थे, कोई सुनता न था। सारी कक्षा उधम मचाने में लगी थी। घर में बैठे बैठे नोट्स लिखकर कल्पना में पढ़ा देना तो सरल था, लेकिन यह तो लोहे के चने चबाना है। मैंने लड़कों को छुट्टी दे दी और लड़के उछलते कूदते शोर मचाते घर की तरफ भागने लगे। प्रधानाध्यापक ने आकर रोष प्रकट किया और तमाचा मारकर पढ़ाने की सलाह दी, परंतु मैं इससे सहमत न था। मैं थके कदमों से घर लौटा और लेटे लेटे विचार किया, काम तो मुश्किल है पर इसी में मेरी सच्ची परीक्षा है। अगले दिन जैसे ही पाठशाला खुली, लड़के मुझे घेर कर खड़े हो गए और मौज में आकर बिना डरे छुट्टी मांगने लगे। मैंने कहा, ठहरो, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। लड़कों ने शांत होकर कहानी सुनी और इसी बीच मैंने रजिस्टर निकालकर उसमें सबके नाम लिखकर हाजिरी ले ली। कल के छुट्टी छुट्टी के शब्दों के बदले आज वातावरण में कहानी कहानी शब्द गूंज उठे। रविवार के दिन मैं बड़े साहब से मिलने गया और उन्हें बताया कि कैसे विद्यार्थियों को और शिक्षकों को एक दूसरे के नज़दीक लाने में कहानी कितनी अजब और जादू भरी चीज है। पहले जो बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, वे अब कक्षा से निकालने पर भी ना निकलते। कहानी के द्वारा आज व्यवस्था सिखाई जा रही है, अभिमुखता का अभ्यास हो रहा है, भाषा शुद्धि और साहित्य का परिचय दिया जा रहा है। अगले दिन हाजिरी के बाद मैंने बातचीत छेड़ी और सबको सफाई से आने को कहा। उसी दिन बड़े साहब से मिलकर छात्रों से पाठ्य पुस्तक न खरीदवा कर उन पुस्तकों की कीमत में अच्छी अच्छी पढ़ने योग्य पुस्तकें खरीदने की अनुमति मांगी। साहब ने परिणाम की चेतावनी देकर अनुमति दे दी। कहानी और खेल, पुस्तकालय और आदर्श वाचन, स्वच्छता और व्यवस्था की खटपट करते करते बात की बात में 2-3 महीने बीत गए। काम का हिसाब लगाने बैठा तो पता चला अभी तो पात्र शेर में पहली पूनी भी नहीं कती है। पाठ्यक्रम के हिंदी, गणित, इतिहास और पदार्थ पाठ आदि विषयों में से तो कुछ हुआ ही न था। वाचनालय में अभी थोड़ी किताबें हैं। अभिभावकों को तो बस एक ही टेर पड़ी है कि पढ़ा दो। मेरे साथी शिक्षक को भी मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं, वे तो मुझे निरा मूर्ख समझते हैं। मेरे प्रयोग का 3रा महीना शुरू हो चुका था। कहानी तो प्रतिदिन चलती ही थी और खेल भी खेले जाते थे। बीच बीच में बातचीत, आदर्श वाचन और छात्रों के शरीर की परीक्षा भी हो जाती थी। वाचनालय भी धीमी चाल से आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने पाठ्यक्रम के विषयों को एक एक कर लेना शुरू किया और लड़कों को श्रुति लेखन लिखना सिखाया। छात्रों से कह दिया कि रोजाना घर से किसी भी किताब की चार पंक्तियां देखकर सही सही लिख लाया करें। स्वयं उन्हें प्रतिदिन 10 मिनट वाक्य लिखना शुरू किया। वह आपस में एक दूसरे को लिखाने और एक दूसरे की भूलें सुधारने के लिए भी उन्हें रोज के 15 मिनट दिए। साफ सफाई पर जब बात ना बनी तो मैंने अपने खर्चे से 2 झाड़ू, एक आईना, एक कंघा, खादी का एक तौलिया और एक छोटी सी कैंची खरीदी। दूसरे दिन मैंने लड़कों को कतार में खड़ा किया, आईने में सबके मुंह दिखाए और कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारा मुंह, आंख या नाक गंदी है तो नल पर जाकर धो लो, हाथ पैर भी धो और बाल भी गो लो। अब तक लड़के मुझ पर भरोसा करने लगे थे। मैंने कहा, रोज पाठशाला में आकर पहले तुम यह काम कर लिया करो। इतिहास की शिक्षा की नींव तो मैं कहानी के माध्यम से डाल ही चुका हूँ, अब कविता की नींव लोकगीतों के माध्यम से डालूं। मैंने गहरे विचार के बाद सोच लिया था कि पहले 6 महीने मुझे बुनियादी काम करना है और बाद के महीनों में उस पर विधिवत पढ़ाई की इमारत खड़ी करनी है। अब मेरी कक्षा में लगभग इस प्रकार का काम चल रहा था, वार्ता कथन, पुस्तक वाचन, आदर्श वाचन, खेल, श्रुति लेखन, कविता श्रवण, स्वच्छता और प्रार्थना। समय सरपट दौड़ा जा रहा था। मैंने सोचा अब इन्हें इतिहास पढ़ाना शुरू करूं। मैंने इतिहास की पाठ्य पुस्तकें देखी पर उनसे मुझे संतोष ना हुआ। मैंने सोचा इन पाठ्य पुस्तकों से तो काम नहीं चलेगा, तब क्या करूं? कहानियों द्वारा इन्हें इतिहास पढ़ाऊं तो कैसा रहे? दूसरे दिन मैंने एक कहानी शुरू की। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन भी यही क्रम रहा। अब तो छात्रों में से कोई खेलने और गाने का नाम ही नहीं लेता था। दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़े रहते थे। एक दिन मैंने एक कहानी को सूत्र रूप में लिखा, एक एक वाक्य में एक एक घटना पिरो दी और कहानी की वह रूपरेखा छात्रों को पढ़ने दी। विद्यार्थी उसे पढ़ते गए और उन्हें सुनी हुई कहानी का स्मरण होने लगा। कुछ दिन बाद मैंने प्रयोग की दृष्टि से अधिकारी महोदय को अपनी कक्षा में बुलाकर छात्रों के इतिहास में परीक्षा लेने को कहा। परीक्षा के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि दूसरी कक्षाओं में भी इसी रीति से इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी पाठशाला ने बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। डायरेक्टर महोदय पधारने वाले थे। पाठशाला की तरफ से उस दिन एक जलसा किया जाता और छात्रगण उसमें संवाद करते, कविताएं गाते, कवायद करते और फिर साहब अच्छा काम करने वाले छात्रों को इनाम देते। परंतु मैंने प्रधानाध्यापक से मना कर दिया कि मेरी कक्षा के लड़के इस काम में भाग न ले सकेंगे। प्रधानाध्यापक जी ने साहब के पास मेरी शिकायत लिख भेजी। साहब ने मुझे बुलवाया और गुस्से में इसका कारण पूछा। मैंने कहा कि मेरे लड़के दूसरों के सामने नाच कूद कर पाठशाला के लिए झूठी प्रशंसा प्राप्त नहीं करेंगे, यह सरासर ढोंग और दिखावा है।
आप मुझे इससे मुक्त रखिए। मैं कुछ ऐसा प्रबंध करूंगा कि मेरे लड़कों को दिखावा न करना पड़े। मुझे विश्वास है कि मेरे कार्यक्रम से आप और वे दोनों प्रसन्न होंगे। साहब मान गए। निश्चित दिन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ डायरेक्टर साहब पधारे। रटा रटाया कार्यक्रम चला। सम्मेलन समाप्त हुआ। साहब ने आभार माना, अपना हर्ष प्रकट किया और इनाम बांटे। इतने में साहब ने बड़े साहब से विनती की, चौथी कक्षा के ये शिक्षक आपको अपना कुछ काम दिखाना चाहते हैं। बड़े साहब राजी हो गए। मैंने पर्दा खोला। बीच में मैं और आसपास मेरे विद्यार्थी थे। हमने शुरुआत एक प्रतिदिन गाई जाने वाली प्रार्थना से की, फिर कई नाटक खेले। अंत में मैंने रंगमंच पर आकर बताया कि जो कहानियां इन्होंने पढ़ी व सुनी थी उसी का अभिनय करके दिखाया है। इसमें कुछ भी रटा रटाया नहीं था। डायरेक्टर साहब के मुंह पर प्रसन्नता खेल रही थी और साहब की खुशी का ठिकाना न था। मैं घर गया। सचमुच आज मैं आनंदमग्न था, क्योंकि आज मेरे प्रयोगों की कद्र की गई थी। 6 मई परीक्षा निकट आ गई थी और मेरी गाड़ी अभी कोसों दूर थी। मैंने अभी तक भूगोल, पदार्थ, पाठ और व्याकरण को छुआ तक न था। मैंने सोचा, अब मैं व्याकरण शुरू करूं। अब सवाल यह उठता था कि व्याकरण पढ़ाया किस तरीके से जाए। मैंने इस पर विचार किया और एक योजना भी बना डाली और तदनुसार काम करने लगा। विद्यार्थियों को बड़ा मजा आया और 2 महीने में वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद और अव्यय पहचानना सीख गए। एकवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद भी वह समझ गए। इसी बीच हमारी कक्षा में एक दिन अचानक डिप्टी डायरेक्टर महोदय आ पहुंचे और बोले, याद रखो, तुम्हें अपना प्रयोग सफल करके ही दिखाना है। मैंने हंसकर कहा, आप जरा इन छात्रों की परीक्षा लेकर देखिए। साहब ने छात्रों से 2-4 सवाल पूछे, फिर बोले, ओहो, ये तो बड़ा ही सुंदर काम हुआ है। तुम्हें मुझे ये सारी योजना समझानी होगी। कल छुट्टी है, मेरे घर आओ और मुझे समझाओ। दूसरे दिन मैं अपनी सारी सामग्री लेकर उनके घर जा पहुंचा और उन्हें बताया कि किस तरह खेल खेल में गत्ते या पट्टे पर शब्द लिखकर मैंने छात्रों की व्याकरण सिखाई थी। साहब ने कहा, बड़ी ही अच्छी रीत है यह तुम्हारी। यह रीत मुझे अपनी पाठशाला भर में चलानी है। 6 माह परीक्षा के दिन आए। साहब स्वयं ही परीक्षा लेने वाले थे। मैंने अपनी कक्षा की तैयारी कर रखी थी, पर अपने ही ढंग से, अपनी नाटकीय शैली के अनुसार मैंने परीक्षा दी। भाषा पर काबू की, वार्ता कथन की, रुचि की, स्मृति विकास की, अभिनय की, कविता की, भाषा शिक्षण की, बुद्धि शक्ति की, स्वच्छता की, खेलों की, व्यवस्था और नियम की, कला की। मैंने विद्यार्थियों का एक हस्तलिखित मासिक पत्र भी उनके सामने पेश किया। साहब ने प्रसन्नता पूर्वक सिर हिलाया और कहा, बहुत ही अच्छा काम है। 6 माह परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। अब मैं भूगोल सिखाने का विचार करने लगा। मैंने भूगोल की पाठ्यपुस्तक देखी और निराशा से एक और रख दी। वही रटा रटाया पाठ्यक्रम। मैंने कुछ नक्शे मंगवाए और उन्हें दिखाए, फिर कुछ देर तक उनसे चित्र बनवाए। एक पखवाड़े के बाद मैं हाई स्कूल के एक चित्र शिक्षक को बुला लाया व उनसे कक्षा में चित्र बनवाए और रंग भरवाया। थोड़े दिनों बाद मैंने अपने एक सर्वेयर मित्र को बुलाया और उन्हें पाठशाला मापकर उसका नक्शा बना देने को कहा। एक दिन हाई स्कूल से मैं एक दूरबीन ले आया। लड़कों को मैंने उससे दिखाया कि दूर की चीजें किस प्रकार नजदीक दिखाई देती हैं। रात में ग्रहों और तारों को देखने के लिए एक टेलीस्कोप ले आया। मेरे साथी शिक्षक भी अब मेरी निंदा छोड़कर मुझसे कुछ सीखने की को अभिमुख हो गए थे। धीरे धीरे मैंने उन्हें भूगोल की कई बातें बता दी। वार्षिक परीक्षा का समय निकट था। बैठे बैठे मैं गणित पर विचार करने लगा। परीक्षा लेने पर मैंने पाया कि छात्रों को जोड़ गुणा बाकी आदि का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान नकली और यंत्रवत है। डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिलकर मैंने साफ साफ कहा कि गणित में मैं कोई नई बात करके न दिखा सकूंगा, क्योंकि यह परिवर्तन मूल ही में होना चाहिए। वार्षिक परीक्षा का दिन आया। अधिकारी महोदय ने सभी छात्रों को ऊपर की कक्षा में चढ़ाने को कहा, पर मैंने मना कर दिया व उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार चढ़ाने को कहा। वार्षिक सम्मेलन का दिन आया। साहब की आशा से मेरे बच्चों ने कार्यक्रम बनाया व प्रस्तुत किया। अंतिम कार्यक्रम पारितोषिक वितरण का था। डायरेक्टर साहब ने पारितोषिक के 125 रुपये वाचनालय की स्थापना के लिए दिए, जिससे सब उसका लाभ उठा सकें। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि मेरे प्रयोग बहुत सफल हुए हैं व प्राथमिक पाठशाला के पुराने ढर्रे के शीघ्र अंत की संभावना जताई। भाषण समाप्त होते ही सब अपने अपने घर चले गए। मैं भी एक वर्ष के अपने सफल प्रयत्नों पर हर्ष मचाता हुआ घर पहुंचा और नवीन शिक्षा के उज्ज्वल भविष्य का मधुर स्वप्न देखने में लीन हो गया।
जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे पास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी, आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा, कोई कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगा ने पानी ना दिया, खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे। हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा,
बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पांच लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग पानी से पानी भरने देंगे क्या? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो न अब जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतिमिम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटे करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाले लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गर्रिये की एक भेंट चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हैं हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को तो इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा। इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लड़कियां हैं। लड़की नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए भी छीन झपट कर ले ही लेती हो, और कैसी होती हैं लड़कियां? मत लजाओ दीदी, छीन पर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी के दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी के मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा पानी में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने दो चार हाथ जल्दी जल्दी मारे, घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई, रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। और लोगों के यहाँ चाहे जो भी होता हो, तुलसी महतो ने अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न किया। रामू जवान होकर भी कुछ काट का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबाड़ी के काम में इतनी निपुण कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती रहती कि कहीं लड़कों लड़की पर देवताओं की आँख न पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती। बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं, यह भय तो ना था, भय था नज़र का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था, लक्ष्मी पछाड़ खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देख सुभागी भी रोती थी, बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो। उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। वह सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है जो खेल खेलते हो। वह दूसरों को दुख देकर ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई डर नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो। तुम्हें लोग दयालु कहते हैं, यही तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी, उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छुपा कर रख देती। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल कर दे देती, अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो, जवान लड़की को यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो। तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने, यह तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझा कर कहा, बेटी हम तेरे ही भले को कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी। सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझसे ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर मैं सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की रहूँगी, फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूँ। उजड़ ड्रामों बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी, तो इस भरोसे ना रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी दो अंगुल ऊंची थी, मटक कर बोली, हमने किसी का कर्ज थोड़े ही खाया है कि जन्म भर बैठा भरा करें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, ये हमारे बूते की बात नहीं है। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया, और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी, तो और भी उसके सिर हो गई। हमेशा एक ना एक खुचड़ लगाए रहती, उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाथती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती, हाँ भाई को न रोकती। सोचती, ये तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता, अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया, सुभागी से बोला, अगर उन लोगों का बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग लेकर रहती हो, तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब ना दिया, बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कहता था। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते, मेरे पीछे जो चाहे करना, बिचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा, मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया था और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्मों के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और वह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का मेरा एक में निभा नहीं होता, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाऊँ, रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं है। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे, उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम, रामू ने डिठाई के साथ कहा, जब एक में ना गुजर हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है। रामू, एक बात हो तो बताओ। सज्जन सिंह, कुछ तो बताओ। रामू, साहब एक में मेरा इनके साथ निभा ना होगा, बस मैं और कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आपने इसका मिजाज, अब चाहे चार हिस्सों में तीन हिस्से उसे दे दें, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ ना रहूँगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था, जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा सातवें बैरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा यह सब बांट बखरा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। अपने से जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ तो घर का बारह बाँट होना मुझसे नहीं देखा जाता, मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी हम तुझे न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुँह नहीं देखना चाहता, उसके साथ तो रहना दूर की बात है। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल नहीं हैं। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारे, मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही मैं तो और लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी के मना करने पर भी कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे, अब सुभागी ने कुछ रुपए बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है, अच्छा भोजन ना मिले तो वे किसके आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया, कहने लगे, घर का काम यूँ ही क्या कम है कि तू नया झंझट पाल रही है? सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा मुझे दूध के बिना खाना नहीं अच्छा लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध हाथ से छूती नहीं, खाने को कौन कहे, सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती है। गांव में जहां देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ, लड़की नहीं देवी है, दो मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी किए जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन से महतो को जोर का जोर चढ़ा, देह पर कपड़ों का तार भी नहीं रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी, सुभागी पानी लिए खड़ी है। अभी कुछ क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से जोर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलो? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी? सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़े ही जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है, चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का, जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें, मर भी जाए तो ना जाऊं। स्त्री हंसकर, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी? रामू, जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे? स्त्री, नहीं जी यह अच्छी बात नहीं है, चलो देख आएं, कुछ भी हो बाप ही तो हैं, फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे? रामू, चुप रहो मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभागी के साथ चले आए। यहाँ पहुँचे तो महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजन नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही को सौंपे जाता हूँ। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा, भैया महतो घबराओ नहीं, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसा ही समझता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से ना देखेगा। और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। उसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि करने पर राजी ना हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार ना किया वह मेरा पिता नहीं, ना मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि जब तेरहवीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर, सभी सामान इफरात से जमा हो गए। रामू देख देख कर जलता था और सुभागी उसे जलाने ही के लिए यह सबको सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देख कर खर्च करो, जब कोई कमाने वाला नहीं बैठा आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे, मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वे समझते होंगे इन दोनों के किए कुछ ना होगा, उनका यह घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो रही। तेरहवीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का बोझ हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठा उठा कर रख रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह, वह पूछ कर क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती थी। कोई 300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सकुचाते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपए दे देता? सज्जन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं? लक्ष्मी उन स्त्रियों में थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब वह एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति, मानो सब से मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी, मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार ना की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जीवन पर भी काबू नहीं? वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौरही ही हो गई है, सीधी सी बात करते नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कौरकंठ के नीचे ना उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा ना हुआ कि पति के बिना उसने खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी, दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती है, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुँचा है। महतो को भी तो यही चोर था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह ने दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिड़की दी कि वह उसके समीप ना जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी कोख पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे। 500 रुपए का ऋण था और उसकी जान, मगर वह हिम्मत ना हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इनमें कभी नागा ना पड़ता, वह मानो प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे, सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किश्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना ना था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी एक प्रार्थना है, कहो कहूँ कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से देखकर कहा, दादा आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी, मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसीलिए नहीं कहा कि तुम अपने को देनदार समझ रही थी, अब रुपए चुक गए, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं, रत्ती भर भी नहीं, बोलो कहूँ? सुभागी आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो इनकार न करना, नहीं मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखाऊंगा। सुभागी क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे बारहा देखा, बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपके हुक्म का कैसे अपमान कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। सहसा मेरी 5 वर्ष की लाडली बेटी मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर खिड़की की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। मैं उस समय उपन्यास लिख रहा था, 17वां अध्याय चल रहा था। नायक नायिका को लेकर अंधेरी रात में जेल की ऊंची खिड़की से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहा था। घटना वहीं रुक गई। सोचने लगा, मेरी बेटी कितनी चंचल और बातूनी है। अभी कुछ पहले वह मेरे पैरों के पास बैठी खेल रही थी कि अचानक उसे यह क्या सूझी। मिनी के इस काम से मुझे अचरज तो नहीं हुआ, पर परेशानी ज़रूर महसूस हुई। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए काबुली वाला आ खड़ा होगा, मेरा 17वां अध्याय अब पूरा नहीं हो सकता। ज्यों ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह घर के अंदर भाग आई। उसके मन में एक झूठा विश्वास था कि काबुली वाला अपनी झोली में उसी की तरह के 2-4 चुराए गए बच्चे छिपाए रहता है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। आदमी को घर बुलाकर कुछ न खरीदना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उससे कुछ खरीदा, 2-4 बातें हुई, पता चला उसका नाम रहमत था। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिली के डर को पूरी तरह खत्म करने के लिए उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे सटकर काबुली वाले के चेहरे और झोली की ओर शक भरी नज़र से देखती हुई खड़ी रही। काबुली उसे झोली के अंदर से कुछ सूखे मेवे निकाल कर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने डर से मुझे घुटने से सटकर खड़ी रह गई। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर से बाहर जाते समय देखा कि मेरी नन्ही बेटी दरवाजे के पास बेंच के ऊपर बैठी अपनी बेसिर पैर की बातें कर रही है। काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। वह बीच बीच में मिनी की बातों पर अपनी राय भी बताता जाता था। मिनी को अपने 5 साल के जीवन में पिता के अलावा ऐसा धीरज रखकर उसकी बातों को सुनने वाला कभी नहीं मिला था। मैंने यह भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा हुआ था। मैंने काबुली वाले से पूछा, उसे यह सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। मैंने जेब से एक अठन्नी निकालकर उसको दे दी। काबुली वाले ने अठन्नी मुझसे लेकर अपने छोले में रख ली। घर लौटकर आया तो देखा कि उस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ उससे पूछ रही थी, तुझे ये अठन्नी कहाँ मिली? मिनी कह रही थी, काबुली वाले ने दी, मैंने मांगी नहीं थी, उसने खुद दे दी। मैंने मिनी की माँ को समझाया और मिनी को बाहर ले गया। पता चला कि इस दौरान काबुली वाले ने लगभग रोज़ आकर मिनी को पिस्ता बादाम देकर उसके नन्हे दिल का विश्वास पा लिया है। वे आपस में दोस्त बन गए हैं। दोनों में कुछ बंधी हुई बातें और हंसी मजाक चलते रहते। काबुली रहमत को देखते ही मेरी बेटी हंसते हुए पूछती, काबुली वाले तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसते हुए उत्तर देता, हाथी। मतलब उसकी झोली में हाथी है। इस बात से दोनों खूब हंसते। दोनों की सरल हंसी देखकर मुझे भी अच्छा लगता। उनमें एक और हंसी भरी बात चलती थी। रहमत मिनी से कहता, मिनी तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? ससुराल का मतलब नहीं समझने के कारण मिनी उलट कर पूछती, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ससुर के लिए खूब मोटा घूंसा तान कर कहता, मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नाम के किसी अनजाने जीव की पिटी पिटाई हालत के बारे में सोचकर खूब हंसती। मुझ में देश विदेश घूमने की इच्छा है, लेकिन अपने कमरे से बाहर निकलते ही घबराहट होने लगती है। इसलिए सुबह अपने कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबले के साथ बातचीत करने से बाहर घूमने का काफ़ी काम हो जाता है। वह टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता है और उसकी तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन मिनी की माँ बहुत शक्की स्वभाव की महिला थी। रहमत काबली वाले पर उन्हें भरोसा नहीं था। उन्होंने मुझसे बार बार उस पर ख़ास तौर से नज़र रखने के लिए प्रार्थना की। उनके शक को हंसी में उड़ा देने पर उन्होंने कई सवाल किए। क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं जाते? एक लंबे चौड़े काबली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या बिल्कुल नामुमकिन है? मुझे मानना पड़ा कि ये बातें नामुमकिन नहीं हैं, लेकिन मैं इस कारण भले मानस रहमत को घर आने से मना नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वह अपना सारा उधार रुपया वसूल करने में जुटा रहता, लेकिन फिर भी एक बार वह मिनी से ज़रूर मिल जाता। जिस दिन सुबह नहीं मिलता तो शाम को आ पहुंचता। कभी कभी अंधेरे कमरे में उसे बैठा देखकर सचमुच भैंसा लगता, लेकिन जब उन दोनों की भोली भोली बातें सुनता तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी सड़क पर बड़े जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आँख उठाई तो देखा दो पहरे वाले अपने रहमत को बांधे लिए आ रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर और कपड़ों पर खून के दाग हैं। एक पहरे वाले के हाथ से खून से सना छुरा है। मैंने बाहर आकर पहरे वालों को रोक कर पूछा, मामला क्या है? मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसने झूठ बोलकर रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने उसके छुरा भोंक दिया। रहमत उसे झूठे आदमी को तरह तरह की गालियां दे रहा था। तभी काबुली वाले, ओ काबुली वाले, पुकारती हुई मिनी घर से बाहर निकल आई। पहले मारते रहमत का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ पूछा नहीं जा सकता था। मिनी ने छूटते ही उससे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। मिनी को उसका जवाब हंसी भरा लगा। वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। छुरा मारने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। मैं उसकी बात करीब करीब भूल गया। मिनी भी उसे जल्दी भूल गई। धीरे धीरे उसके नए मित्र बनते गए। उम्र बढ़ने के साथ एक एक करके सखियां जुटने लगीं। मेरे साथ भी अब वह पहले जैसी बातचीत नहीं करती। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। बहुत सुहावनी सुबह थी। आज मेरे घर में शहनाई बज उठी थी। उसके स्वर मेरे हृदय को अंदर से रुला रहे थे। मेरी लाडली बेटी मुझसे विदा होने जा रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही विवाह की तैयारियां हो रही थीं। मैं बाहर के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था, तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास ना वह झोली थी ना उसके वे लंबे बाल। शरीर की कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। आखिर उसकी हंसी देखकर उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब छूटा? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। आज के शुभ दिन ये आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक काम है, मुझे बहुत से काम करने हैं, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह चल दिया और दरवाजे के पास पहुंचकर बोला, क्या एक बार मुन्नी को नहीं देख सकूंगा? शायद उसे विश्वास था मिनी अब भी वैसी ही होगी, नन्ही सी बच्ची जो पहले की तरह ही काबली वाले कहती हुई दौड़ी आएगी, बच्चों जैसी हंसी भरी बातें करेगी। वह पहले की तरह उसके लिए किसी से मांग जांच कर एक डिब्बा अंगूर और किशमिश बादाम लाया था। मैंने कहा, आज घर में काम है, वह किसी से नहीं मिल सकेगी। वह दुखी मन से सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसा एक दर्द महसूस हुआ। सोचा उसे वापस बुलवा लूं, तभी देखा खुद लौटा आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, दे दीजिएगा। उन्हें लेकर जब मैं दाम देने लगा तो वह मेरा हाथ पकड़कर बोला, मुझे पैसा मत दीजिए बाबू, जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है, मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए थोड़ी मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं? यह कहते ही उसने अपने कुर्ते में कहीं छाती के पास से मैले कागज़ का एक टुकड़ा निकाला और बहुत सावधानी से उसकी तह खोलकर मेरी टेबल पर बिछा दिया। देखा, कागज़ पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटो नहीं, रंगों से बना चित्र नहीं, प्यारी बिटिया के हाथ में थोड़ी सी कालीख लगाकर कागज़ के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। अपनी प्यारी बिटिया के हाथ की इसी यादगार को सीने से लगाए रहमत कलकत्ते की सड़कों पर मेवा बेचने जाता, मानो उस सुंदर कोमल नन्ही बच्ची के हाथ की छुअन भर उसके हृदय में अमृत की धारा बहाती रहती। देखकर मेरी आंखें छलछला आईं। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ, वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। मैंने उसी समय मिनी को भीतर से बुलवाया। शादी की लाल साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए बहुवेश में मिनी लज्जा से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर काबली वाला सकपका गया, अपनी पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया, अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तो ससुराल जाएगी। रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मिनी मुंह फेर कर खड़ी हो गई। मुझे काबुली वाले और मिनी की पहली भेंट याद हो आई और कुछ दुखी हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी बेटी भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी, इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, यह भी भला कोई जानता है? उसका चेहरा दुख और चिंता से भर उठा। मैंने एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ, तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। नमस्कार, प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी, 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी गर्दनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका, कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँग गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढक कर मिसरानी को जींस देने गई और दूध न दारत। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया, बालाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ ना लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर सूंघा। माल अच्छा है, ताक की ऊंचाई अंदाजी और रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपक। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू के बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घसना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधी की भांति बातें सुन रही है। महरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई। माँ जी,
बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ। मिसरानी बोली, माँ जी बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई ना बनाएंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक तो कहती हो, अब जब बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला? महरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ जल्दी दौड़, पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों को रामू के घर में तांता बंध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही उठ बैठे। पंडित टाइम से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्राश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच, चेहरा गोल मटोल, मूछ बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख जी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी, सास जी, मिसरानी, किस्नू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह मूरत जब मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी जी ने कहा। पंडित परम सुख ने पत्र के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, मत्थे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया और माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वयं गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान है रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए, जब तक बिल्ली ना दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा, बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परम सुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही, सो रामू की माँ बिल्ली के तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से कम की क्या होगी। हाँ कम से कम 31 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो और आगे तो अपनी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा, अरे बाप रे 21 तोला सोना, पंडित जी यह तो बहुत है, तोला भर के बिल्ली से काम ना निकलेगा। फंडेड परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, एक तोला सोने की बिल्ली, अरे रुपया का मोह बहू से बढ़ गया है, बहू के सिर बड़ा पाप है, इससे इतना लोभ ठीक नहीं। बोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तेल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा, बस इतने से काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा, रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा, बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की माँ, खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप तो देख लो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है, और जैसी जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है, आप लोगों को ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 100-150 रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनों की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो है नहीं, बड़े पाप के लिए खर्च भी चढ़ा बड़ा चाहिए। छन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा। रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरे तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा है, सो उसे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाचना चाहोगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह करता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बिचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, छन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की तोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में मैं बनवा कर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो, और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी कि मेहरी हाफते हुए कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री? महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।